अरुणिमा भागकर शारदा जी के पास जाती है और उन्हें कस के गले लगा लेती है। वो शारदा जी से लिपटकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे गुस्सा थी इसीलिए मैंने तुमसे बात नहीं की। मैं मतलबी हो गई थी, अपने मतलब में मैंने तुमसे बात तक करने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। अरुणिमा की पकड़ उसकी माँ पर मजबूत होती जा रही थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने उसे गले क्यों नहीं लगाया। उसने अपनी माँ को छोड़ा और एक कदम पीछे होकर अपनी माँ को ध्यान से देखने लगी। अरुणिमा देखती है कि उसकी माँ का वज़न पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन वो अब कुछ ज़्यादा ही डरी डरी सी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अरुणिमा की बातें उनके कानों तक गई ही नहीं थी। वो आसपास के लोगों को घबराई हुई नज़रों से देख रही थी। रजत और मिश्री भी साथ आए हुए थे। अरुणिमा ने रजत और मिश्री की तरफ देखते हुए कहा, माँ को क्या हुआ है? पर मिश्री इतनी डरी हुई थी कि उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अरुणिमा ने रजत से पूछा, तुम बताओ क्या हुआ है माँ को? रजत एक नज़र अरुणिमा को देखता है और फिर उसके पीछे से आते हुए आस्तिक को देखता है, जो अपनी निगाहों से ही रजत को चेतावनी दे रहा था कि अगर उसने कुछ भी बताने की गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वैसे तो रजत खुद आर्मी में था और उसे किसी चीज़ का डर नहीं था, लेकिन फिलहाल उसे सिर्फ मिश्री की फ़िक्र थी, क्योंकि वो इस वक्त पूरी तरह से अकेली थी। अरुणिमा अपने पूरे परिवार के साथ मिलने में इतनी बिजी हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि आस्तिक कब उसके पास आ गया। उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, रानी साहिबा, आपके लिए इतनी बड़ी जन्मदिन की पार्टी रखी है, मुझे लगता है कि इस पार्टी में सबको उस शख्स से भी मिलना चाहिए जिन्होंने आपको दुनिया में लाया है। क्यों, क्या ख्याल है? अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आस्तिक अब क्या करना चाहता है। सब कुछ तो छिन चुका है उनसे, वो उसके परिवार से अब वो और क्या लेना चाहता है? शारदा जी से चला भी नहीं जा रहा था, वो बार बार गिरने को हो रही थी, इसीलिए मिश्री शारदा जी के पीछे जल्दी से दौड़ते हुए गई ताकि उन्हें संभाल सके। आस्तिक शारदा जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ पार्टी में लेकर आता है। शारदा जी आस्तिक को डरी हुई नज़रों से देख रही थी और उनका हाथ इस समय बुरी तरीके से कांप रहा था, लेकिन आस्तिक ने शारदा जी का हाथ नहीं छोड़ा। वो उन्हें लेकर स्टेज के पास आता है और अनाउंस करते हुए कहता है, आस्तिक ने माइक उठाया और सबको अनाउंस करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज, आप सब यहाँ पर मेरी वाइफ के जन्मदिन की खुशी में आए हैं। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आप सब मेरी वाइफ को जानते ही हैं और मुझसे जुड़ने के बाद उसे किसी और पहचान की ज़रूरत ही नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वाइफ के परिवार से भी मिले। उसके बाद आस्तिक शारदा जी को आगे करते हुए कहता है, सो देवी और सज्जनों, मिलिए मेरी सास से, श्रीमती शारदा देवी। ये बहुत ही सुलझी और दयालु महिला है और इन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे काम किए हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। आस्तिक की आवाज़ में व्यंग्य साफ सुनाई दे रहा था। अरुणिमा को समझ आ रहा था कि आस्तिक उसके परिवार का अपमान कर रहा था। तभी मिश्री जल्दी से शारदा जी के पास आती है और उन्हें संभालते हुए कहती है, माँ आप चलिए यहाँ से। लेकिन आस्तिक मिश्री को रोकते हुए कहता है, और ये हमारी साली साहिबा, मेरी वाइफ की छोटी बहन, तो कैसा लगे आपको मेरा ससुराल वाले? पार्टी में आए मेहमानों में से एक ने कहा, राजा साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, ये सच में आपके ससुराल वाले हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने तो उन्हें देखकर ऐसा समझा जैसे कि कोई भिखारी है और यहाँ पर भीख लेने आए हैं। उस आदमी की बात पर सभी लोग हंसने लगे, यहाँ तक कि आस्तिक भी हंसने लगा। पृथ्वी, जानवी और कीर्ति तीनों ये देखकर हैरान हो गए थे। उन्हें लगा नहीं था कि आस्तिक इस तरीके से अरुणिमा के परिवार की बेइज्जती करेगा। आस्तिक जब शारदा जी के बारे में अनाउंस कर रहा था, तभी वहां पर सक्षम और प्रणाली भी आ जाते हैं और उन्होंने भी आस्तिक की पूरी बात सुनी। वैसे प्रणाली ने तो कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, लेकिन सक्षम थोड़ा हैरान जरूर हुआ। अरुणिमा की आंखों से आंसू आने लगे थे। अरुणिमा अपने परिवार को देख रही थी जो शून्य भाव होकर बस स्टेज पर खड़ा हुआ था, और आस्तिक का दिल खुशी से भर रहा था जब अरुणिमा के परिवार की बेइज्जती हो रही थी। तो एक दूसरे गेस्ट ने हंसते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा राजा साहब, आप सच में बहुत बड़े दिल वाले हैं, वरना ऐसे परिवार की बेटी से कौन ही शादी करेगा। अरुणिमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो निराशा के साथ अपने परिवार को देख रही थी, यहाँ तक कि मिश्री का चेहरा भी आंसुओं से भर गया था। लेकिन शारदा जी अभी की किसी पुतले की तरह भावहीन होकर स्टेज पर ही खड़ी थी। पृथ्वी समझ गया था कि आस्तिक ये सब जानबूझकर कर रहा था, इसीलिए सबका ध्यान इस चीज़ से हटाने के लिए पृथ्वी स्टेज पर आता है और एक जोरदार ताली बजाते हुए सबसे कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि खाना लग चुका है, आप लोग प्लीज़ जाकर डिनर कर लीजिए। सब लोग अरुणिमा के परिवार के बारे में उल्टा सीधा बातें करते हुए डिनर करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अरुणिमा उनके साथ नहीं गई थी। वो अपने परिवार के पास वापस आती है और उन्हें अपने साथ महल के अंदर ले जाती है। अरुणिमा सबको लेकर अपने कमरे में जाती है। उसे अब फर्क नहीं पड़ता है कि आस्तिक क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। उसने आस्तिक से पूछने की भी सहमत नहीं उठाई और अपने परिवार को लेकर अपने कमरे में चली गई। आस्तिक ने उसे जाते हुए देख लिया था और अरुणिमा को ये करने से नहीं रोका, क्योंकि वो जानता था कि अरुणिमा अपने परिवार से किस बारे में बात करेगी, बल्कि वो तो सामने से चाहता था कि अरुणिमा अपने परिवार से इस बारे में बात करे।
सारे मेहमानों को डिनर एरिया पर लाने के बाद जानवी ने पृथ्वी से पूछा, ये क्या था पृथ्वी, ये भाई साहब बाहर क्या कर रहे थे? पृथ्वी खुद परेशान होते हुए कहता है, मुझे खुद नहीं पता जानवी, भाई ने ऐसा क्यों किया, मुझे तो लगा उनके और अरुणिमा के बीच सब ठीक हो गया है, फिर अचानक से ये सब कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।